संघ स्वामी जी महाराज ने शुरू किया है। कल राज्य की व्यवस्था वर्णन की थी, ऐसे अयोध्या राज को, अवध को, जहां वध ना हो वह अवध, जहां आपस में कोई वैर विरोध ना हो वह अवध, ऐसे अवध देश के राजा हैं राजा दशरथ, पुत्रहीन हैं। आज वर्णन हुआ, इतने मंत्री थे, इतना सब कुछ था, लेकिन पुत्र कोई नहीं था। राजा को, पिता को बहुत चिंता होती है, मेरे बाद इतने बड़े विशाल राज्य को कौन संभालेगा। विचार विमर्श होने लग गया। गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने सुझाव दिया पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए। यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि बुलाए गए, अन्य ऋषि मुनि बुलाए गए, यज्ञशाला तैयार हुई, यज्ञ हुआ, यज्ञ नारायण प्रकट हुए, गुरु महाराज को प्रसाद मिला, गुरु महाराज ने राजा दशरथ को प्रसाद दिया, कहा तीनों रानियों को बांट दो, चार पुत्र पैदा होंगे, वरदान मिला। राजा दशरथ ने प्रसाद के दो भाग किए, एक भाग महारानी कौशल्या को दिया, शेष जो आधा बचा उसके दो भाग किए एक कैकेयी को दिया, शेष आधा बचा उसके दो भाग किए साधुजनों सुमित्रा को, स्वयं प्रसाद अपने हाथों से नहीं दिया, आधा कैकेयी को दिया, आधा कौशल्या को दिया और कहा आप सुमित्रा को प्रसाद देके तो सम्मानित करो। आध्यात्मिक दृष्टि से सुमित्रा समर्पण है, भक्ति है, अतएव पीछे रहना उसे बहुत पसंद, पीछे पीछे रहती है, उसे आगे होना अच्छा नहीं लगता, जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहती है, ये भक्ति के चिन्ह है। और माँ सुमित्रा भक्ति की प्रतीक है, उपासना की प्रतीक मानी जाती है। माँ कौशल्या को ज्ञान के प्रतीक माना जाता है और कैकेयी को कर्म की प्रतीक माना जाता है, क्रिया की प्रतीक माना जाता है। सुमित्रा ने जो कुछ किया वह उनके गुणों के अनुकूल, जैसे गुण उनके अंदर हैं, उन्होंने सहर्ष दोनों से प्रसाद लिया, अष्टपुरुत आंखों से और कहा माँ कौशल्या कोई बहुत छोटी नहीं है, कौशल्या से, कौशल्या की बहन ही है सुमित्रा, बहुत छोटी नहीं आयु में, लेकिन भक्ति की ये चीज बड़ी अनूठी है, दूसरों को सम्मान देने में भक्ति कंजूसी नहीं करती, दूसरों को सम्मान देती है और स्वयं मान रहित रहती है, ये भक्ति के चिन्ह है, ये भक्त के चिन्ह है। माँ कौशल्या माँ के कई दोनों को माँ कह के संबोधित करती है, यदि मेरे घर दो पुत्र हुए तो मैं एक को आपकी सेवा में और दूसरे को कैकेयी की सेवा में दे दूंगी। समर्पण की पराकाष्ठा सुमित्रा ऐसा ही किया, दो पुत्र पैदा हुए हैं, लक्ष्मण को प्रभु राम की सेवा में सौंप दिया, या यूं कहिए माँ कौशल्या की सेवा में सौंप दिया, शत्रुघ्न को भरत जी महाराज की सेवा में सौंप दिया, या यूं कहिए कि कैकेयी को सौंप दिया। जो उसने व्रत लिया, जो संकल्प किया, उसको पूर्ण कर दिया। परमेश्वर कृपा चार पुत्र पैदा हुए हैं। गर्भावस्था में देवियों हमें क्या करना चाहिए, एक पृष्ठ पूरा स्वामी जी महाराज ने लिखा है, ताकि जो गर्भ में है उस पर अच्छे संस्कार पड़े, सुसंस्कारित हो, तो ये संस्कार गर्भ में ही समझदार माताएं डालती हैं। उसके बाद बच्चा पैदा होता है तो फिर भी अपने सुसंस्कारों के की छाया के अंतर्गत ही उन्हें अच्छी माताएं ऐसे खुले नहीं छोड़ देती। कितना भी लाडला क्यों ना हो, अच्छी माता, समझदार माता ऐसे ही बच्चों को रखती है अपने सुसंस्कारों की छाया में, छत्र छाया में रखती है। प्रथम गुरु तो माता ही है और बहुत जबरदस्त भूमिका हुआ करती है गुरु की, प्रथम गुरु माँ। चार पुत्र पैदा हुए हैं, नामकरण संस्कार हुआ है, जो सब में रमता है, जिसमें सब रमते हैं, उनका नाम राम रखा गया। जो प्रेम के दाता हैं, सुख के दाता हैं, संतोष के दाता हैं, जिन्हें देखने मात्र से, जिनका नाम लेने मात्र से शांति मिलती है, प्रेम उमड़ता है, वे राम। दृष्टिनंदन राम से पहले सदक्षिणु, इनका नाम राम रखने से पहले महर्षि विशिष्ट को इस नाम की महिमा का बहुत ज्ञान था, तभी उन्होंने दशरथ के पुत्र राम का नाम राम रखा। लक्ष्मण जिसका लक्ष्य सिर्फ राम है, वह लक्ष्मण जिसके अंदर एक सर्वोच्च सेवक के लक्षण पाए जाए, वह लक्ष्मण। भरतजी महाराज जो कला क्लेश वैर विरोध इन सब चीजों को खत्म कर दे, प्रेम के प्रतीक भरतजी महाराज उनका नाम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। जिसे शत्रु थर थर कांपे वह शत्रुघ्न। बड़े हो गए हैं, 6 वर्ष के यज्ञ पवित्र इत्यादि सेरेमनी हुई है, गुरु के हवाले हो गए, शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई, युवा अवस्था में प्रवेश कर गए, विवाह योग्य हो गए हैं मेरे पुत्र, माता पिता को ये चिंताएं देवियों सज्जनों कभी खत्म नहीं होती, वे चाहे दशरथ है चाहे हम जैसे सामान्य व्यक्ति हैं। पहली चिंता से शुरू हुआ कि संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, वह चिंता खत्म हुई, आगे की चिंताएं शुरू हो गई। विवाह योग्य हो गए हैं तो कोई योग्य कन्या मिलनी चाहिए ताकि विवाह हो, इस बात की चिंता। अभी विश्वामित्र अटक गए, प्रभु राम को अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं, ये चिंता एक और खड़ी हो गई। अब किसी का जीवन भी देख लो देवी सज्जन, चिंताओं से रहित तो नहीं है। मैं भी समझता हूं ऐसा जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो, बहुत कुछ सिखाता है जीवन में संघर्ष। जिसका जीवन संघर्ष में है वही एक सच्चा इंसान बन सकता है, उसे संघर्ष से फायदा लेना चाहिए, सीखना चाहिए उसे। जो सीखता नहीं है तो मूर्ख है, शट है। इस संघर्ष से सीखना चाहिए। यूं कहिएगा परमात्मा यदि व्यक्ति ठीक ढंग से नहीं समझता तो मार मार के समझाता है, ये उसके समझाने के ढंग है। चिंता रहित जीवन भी जीवन, क्या जीवन हुआ, मानो कुछ ना कुछ जीवन में होता ही रहना चाहिए, दशरथ के जीवन में भी हो रहा है। महर्षि विश्वामित्र आ गए, अभी बातचीत ही हुई है, मन में ऐसा संकल्प ही उठा है मेरे पुत्र विवाह योग्य हैं, इनके विवाह का कुछ करना चाहिए, मैं इन्हें विवाहित देखना चाहता हूं, अपनी बहू में देखना चाहता हूं। बहुएं आ जाएंगी तो फिर चिंता खड़ी हो जाएगी, मैं पौत्र देखना चाहता हूं। किसकी चिंता खत्म होती है, किसी की नहीं, बनी रहती है, कुछ ना कुछ बना रहता है। महर्षि विश्वामित्र से स्वागत हुआ, प्रणाम, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया है। कैसी भारतीय संस्कृति है, कैसी संस्कृति है, उच्च संस्कृति, संत को राजा अपने साथ बिठाते हैं। शायद राजा दशरथ साथ ना बैठे हों, उनके चरणों में बैठे हों, पाद पूजा करी है, उनकी चरणामृत लिया होगा। ये सब चीजें हमारी परंपरा के अनुसार है। आगमन का कारण पूछा, कहां सिद्ध आश्रम में यज्ञ होता है, बहुत वर्षों से सिद्ध नहीं हो रहा, उस यज्ञ में सफलता नहीं मिल रही, ये मरीच सुबाहु इत्यादि तारका इत्यादि, ये रावण के दूत हैं, बहुत रावण के संबंधी हैं, दूत हैं, बहुत विघ्न बाधा डालते हैं। जैसे ही यज्ञ संपन्नता पर आता है उसमें खून डाल देते हैं, हड्डियां डाल देते हैं और यज्ञ असफल हो जाता है, खंडित हो जाता है। मुझे राम दो। महर्षि विश्वामित्र की मांग, फिर संत महात्मा ही क्या हुआ है जिसकी मांग राम ना हो। मांग तो एक ही होनी चाहिए, सबकी एक ही होनी चाहिए, वह राम, राम चाहिए, राम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। जो इस मांग पर दृढ़ रहता है, सुदृढ़ रहता है, उसे एक ना एक दिन राम खोजते खोजते मिलेंगे, इसे और कुछ नहीं चाहिए। राजा दशरथ हर प्रकार के प्रलोभन देते हैं, लेकिन महर्षि विश्वामित्र किसी प्रलोभन से प्रभावित आकर्षित नहीं होते, एक ही मांग और उस पर अटल है, राम चाहिए। आपने वायदा किया था कि जो मांगोगे मैं दूंगा, मैंने मांगा है राम, मुझे राम दीजिए। ये प्रलोभन में जिंदगी में बहुत ही चुका हूं, मैंने सबको छोड़ चुका हूं, दशरथ को याद दिलाते हैं। समय हो गया है साधु जनों, कल आगे चर्चा जारी रखेंगे। जो प्रलोभन में फंसता नहीं वे आगे बढ़ता है, जो प्रलोभन प्रलोभनों में फंस गया वह पीछे हटता जाता है या वहीं टिका रहता है जहां था। आगे प्रलोभन एक पग नहीं बढ़ने देते। विश्वामित्र एक एक प्रलोभन को ठोकर मार रहे हैं, और ठोकर मार रहे हैं तो फिर राम को पाके रहेंगे। महर्षि विश्वामित्र आगे आगे और राम पीछे पीछे, ऐसों के पीछे पीछे नंगे पांव राम चलते हैं, दौड़ते हैं, जिन्हें संसारिक प्रलोभन आकर्षित नहीं करते। जो संसारिक प्रलोभनों में मोह ममता के जाल में नहीं फंसते, उनके पीछे पीछे चलते हैं, चलते हैं ना महर्षि विश्वामित्र, आगे आगे चलेंगे, राम लक्ष्मण पीछे पीछे इनके चलेंगे। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, कल जारी।